जय जय निलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदरशत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। जय निलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदरशत श्री श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय निलीला प्रविष्णु विष्णु पाद श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय परिब्राज का आचार्य त्रिधन्य स्वामी श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय परिब्राज का आचार्य त्रिधन्य स्वामी श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। अनन्य त्रिधन्य पादगण की जय। रूपानुग गुरुवर्ग की जय। सपार्षद गौर हरि की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर ब्रह्मानंदी हरि हरि बोल।
इस मथुरा नगरी में रहते हुए भी अपने घर में ही कभी भी इनके घर में पहुंचता है तो श्रीमद् भागवत जी श्रीमद् गीता जी के ऊपर जो भी प्रश्न लेकर जाता है उनके यथाबुद्धि के अनुसार हमारे श्री गुरु जी उनका समाधान करते हैं। ऐसे ब्रजमंडल के मूर्धन्य विद्वान श्री मनोहराचार्य को शास्त्री जी यहाँ पर विराजमान है, सभापति के लिए उनका हम वरण करवाते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान
राधाकुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवासम प्राप्तो यस्य प्रथिति कृपया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो भक्त्या विहीना परादलक्षै चित्तास्य कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंद सप्रथम है अपने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज अपने गुरुपाद पद्म के चरणों में कोटि कोटि अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। परम पूज्यपाद हमारे सभापति महोदय बहुत कृपा करके यहाँ पर आए हैं, हमारे मथुरा के ये वैभव हैं। हम लोग दो तीन वर्षों से सारे विश्व में हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति का प्राण ब्रज भक्ति का प्रचार करने के लिए विश्व के इस छोर से उस छोर तक हम लोग जा रहे हैं। आज विश्व के सभी लोग हमारे श्रीमद् भागवत के विचारों को सुनने के लिए ललायित हैं, गीता इत्यादि के विचारों को सुनने के लिए ललायित हैं। संसार में कहीं भी सुख नहीं है, वैभव के शिखर पर वो बैठे हुए हैं, किंतु उनको तनिक भी जीवन में सुख की आशा नहीं है, इसलिए वो भारतीय संस्कृति की तरफ में वो ताक रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि हमारा जीवन भी सुखी हो, इसीलिए हमको बहुत आग्रह के साथ में संसार में ऐसे कोई समृद्ध राष्ट्र नहीं है जहाँ से हमें अच्छी तरह से बुलाया नहीं जा रहा, सभी लोग बुला रहे हैं और इसको सुनना चाहते हैं। गीता के कुछ उपदेश करीब करीब विश्व में सर्वत्र कुछ न कुछ आज वहाँ के में प्रचार हो रहे हैं, किंतु भक्ति के जो गूढ़ रहस्य हैं इसको लोग बहुत लोग समझ नहीं पाते। कोटिश्वपि महामुने कोटि कोटि लोगों में से एक को समझना भी बड़ा भारी कठिन है, तभी लोग विश्व के लोग चाहते हैं। सबसे पहले वे जानना चाहते हैं भारतवर्ष में जो सनातन धर्म है ये क्या चीज है। मैंने अभी दो तार जो बार गया हमने बतलाया, देह का धर्म सनातन नहीं है। एकमात्र कृष्णा एक सनातन पुरुष है, गीता इत्यादि में भी बतलाया गया है, भागवत में भी बतलाया गया। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप प्रजौ प्रशाम जन्मित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। कृष्ण एक सनातन ब्रह्म है, परिपूर्ण ब्रह्म है। वेदों में उनके केवल चरण की कांति का केवल वर्णन किया गया है, उसी को ही प्रणाम और अस्तव स्तुति की गई। उनकी महिमा को स्पर्श वेद नहीं कर सका, तैगुण्य विषया वेदा। इसलिए अप्राकृत जो स्वरूप जो कृष्ण है, सनातन पुरुष वही एक है, इसको सब लोग नहीं समझ पाए। और दूसरा जीव है एक सनातन, गीता निश में बतलाया गया, स्थाणु अचलो सनातन इत्यादि गीता में बतलाया गया। ये दो सनातन चीज है, मूल सनातन पुरुष कृष्ण है, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंद सर्व कारण कारण। इसे जितने भी भगवत्ता के प्रकाश दिखे जाते हैं ये सब कृष्ण ही सबके सर्वोत्तम है। एते चांस कलापुन स कृष्णस्तु भगवान सर। जीव उनका नित्य दास है, कोटि कोटि जीव है संसार, पशु पक्षी कीट पतंग ब्रह्मा से लेकर के कीट पतंग तक, जड़ जितने भी पेड़ पौधे इत्यादि मनुष्य सब में जीवात्मा है। जीवात्मा है दो प्रकार की, एक मुक्त और एक बद्ध। बद्ध जीव हम लोग हैं इस संसार में जो भगवान को भूले हुए हैं, इसलिए जीव भी सनातन है, बद्ध होने पर भी सनातन है। और उसका धर्म भी वो जो जीव और भगवान के बीच में जो संबंध है ये सनातन है। इसलिए दोनों के बीच में भक्ति जो है, जो भगवान और जीव को जोड़ने वाली है, भज धातु सेवायाम, जीवों का कृष्ण की जो सेवा है, यही सर्वोत्तम सनातन धर्म है, जिसका गीता में प्रारंभ किया गया है, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज मन मना भव मद भक्ते इत्यादि में इसको इसकी अभिव्यक्ति की गई है। किंतु श्रीमद् भागवत में इसको चरम सीमा में बतलाया गया। ये गोपियों का प्रेम और गोपियों में भी श्रीमती राधिका जी का कृष्ण के प्रति महाभाव, इसमें भी रूढ़ अधिरूढ़ मादन मोदन इत्यादि जो भाव है ये सर्वश्रेष्ठ भाव है जो गीता में बतलाया, जिसको कृष्ण ने भी कहा न पारे हम निर्बद्ध संयुजन। गोपियों के इस प्रेम के बदले में कृष्ण उनको वो चीज दे करके प्रतिदान नहीं दे सके, इसलिए चिर ऋणी हो गए। इसलिए उन्होंने कहा न पारे हम निर्बद्ध संयुजन। इसकी थोड़ी सी झलक उद्धव संदेश में या वेणु गीत में, थोड़ी सी झलक गोपी गीत में, ये कुछ उसकी झलक मिलती है। गोपियों का प्रेम कैसा था, जिसको उद्धव जैसे व्यक्ति, कृष्ण के मंत्री सखा, बृहस्पति के शिष्य, बुद्धि के अफुरंत भंडार था नहीं पा सके। ब्रज में आए, गोपियों का भाव देखा और देखकर के स्तंभित रह गए। कुछ दिन रहे, समझने की चेष्टा की, बहुत दूर से प्रणाम किया, बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम आशा महो चरण सामने, इसे आगे कुछ नहीं कर सकते। गोपियों के एक तनिक भाव को भी लेकर के नहीं गए, लौटे। कुछ समझा उन्होंने महात्मा गोपियों का, उन्होंने कहा जे आज गोपियों का यह विरह देख करके हमारा जन्म सार्थक हो गया, और गोपियों की कैसी कैसी बनी। ये गोपी प्रेम ही सनातन धर्म की अंतिम कड़ी सीमा है, इसे बढ़कर और कुछ नहीं, यही सनातन धर्म। यद्यपि हमारे यहाँ अतिथि भव, माता पिता का आदर करना, समाज में गरीब लोगों की सहायता करना, दधीचि और हरिश्चंद्र इत्यादि के आदर्श इत्यादि देखे जाते हैं, सम दम तितिक्षा इत्यादि जो देखे जाते हैं, ये प्रारंभिक स्टेज सनातन धर्म के हैं, किंतु बहुत दूर से ये लोग लक्ष्य करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि गोपियों का यह प्रेम ही यह सनातन धर्म की चरम सीमा है। लोग तो समझेंगे नहीं, किंतु कुछ लोग जानना चाहते हैं हमारे इन सब विषयों को, इसलिए हम लोग जाते हैं और सुन करके बड़े लोग प्रसन्न होते हैं, इसको काफी लोग ग्रहण करते हैं। इतना ग्रहण नहीं करने पर भी हरिनाम तो ग्रहण ही करते हैं, सदाचार तो अवलंबन करते ही हैं। आज विश्व में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहां पर कि कृष्ण की के प्रति लोगों की भक्ति नहीं है, हरिनाम नहीं करते हैं, सदाचार संपन्न होकर के तिलक इत्यादि धारण करते हैं और भी कुछ जानना चाहते हैं। इसलिए संक्षेप में मैंने कहा, इसी विचारों का प्रचार करने के लिए हम लोग वहां जा रहे हैं अभी, इसीलिए हमने इन सब लोगों को बुलाया है। ये लोग हमें आशीर्वाद करें और शक्ति प्रदान करें ये इन लोगों की इन सब बाड़ियों का हम विदेशों में हम कुछ प्रचार करें। यही बोल करके अभी अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। पीछे और कुछ
गुरुपाद पद्मा नित्रिला प्रविष्टं भक्ति प्रज्ञाने केशव गोस्वामी महाराज ऋषि चरण कमले हमार साष्टांग धन्यवाद प्रणति जाना। तत्पर पूज्यपाद शील नारायण महाराज जी एवं सभापति महोदय अन्यान्य वैष्णवगण ऋषि चरण हमार साष्टांग धन्यवाद एवं श्रोती मंडली कर जाना हमार आंतरिक धन्यवाद।
उनको ले आओ, उनको बैठाओ। कमाल बोल
अधिकार सभा हमारे कि बलवार जन्म आदेश করেছেন। এই পৃথিবীর মধ্যে বা যে সপ্ত দ্বীপের মধ্যে দেখা যাচ্ছে জন্মদ্বীপ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জন্মদ্বীপের মধ্যে সুধাম বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ ও নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছে। এই জন্মদ্বীপের অন্তর্গত যে সকল মহাদেশ রয়েছে সেই মহাদেশের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিধি ভাগ করা হয়ে থাকে। ভগবান অনন্ত জীব সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, কারণ সর্বাপেক্ষা জীবের সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান হচ্ছে মানুষ। এই জন্য মানবকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়ে থাকে। ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র তিনি স্বয়ং রূপ, অর্থাৎ সমস্ত অবতারের মধ্যে ভগবান স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনি অনন্ত জীব সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে মানবই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। সেই সকল বদ্ধ জীবীগণকে কি করে তার পাদপদ্মে নিয়ে যাওয়া যাওয়াতে সেবাকে নিয়োগ করতে পারেন, সেই জন্য তিনি নিজে ব্যাসদেব রূপে বা তা তিনি ব্যাসকে জ্ঞানশক্তির দ্বারা তিনি জগতে প্রকাশ করেছেন এবং তার দ্বারা অনন্ত শাস্ত্র সৃষ্টি হয়েছে। শাস্ত্র মন্থন করলে দেখা যায় যে শাস্ত্রের মধ্যে বহু প্রকার দর্শনাদি রয়েছে। এ সকল দর্শনের মধ্যে ছয়টি দর্শনই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, ন্যায়, সংখ্য, বৈশেষিক, উত্তরমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা। এই সকল দর্শনের মধ্যে উত্তরমীমাংসাই সর্বশ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ উত্তরমীমাংসাই হচ্ছে বেদান্ত দর্শন। এখন শাস্ত্রের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ভগবানকে পাওয়ার জন্য কয়েকটি পথ রয়েছে, একটা কর্মের পথ, একটি জ্ঞানের পথ, একটি যোগের পথ এবং একটি ভক্তির পথ। যারা কর্মকে স্বীকার করেন তাকে কর্মী বলা হয়, যারা জ্ঞানকে স্বীকার করেন তাদের জ্ঞানী বলা হয়, যারা যোগকে স্বীকার করেন তাদেরকে যোগী বলা হয়, যারা ভক্তিকে স্বীকার করেন তাদেরকে ভক্ত বলা হয়। এই কর্মী, যোগী, জ্ঞানী, ভক্তের মধ্যে ভক্ত হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রীয় বলেছে। আবার এই ভক্তের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের ভাগ রয়েছে এবং এই মানুষের মধ্যে নানা প্রকার সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্রহ্মা মাধ্য গৌড়ীয় সম্প্রদায় হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর মতবাদ সর্বশ্রেষ্ঠ। চৈতন্য মহাপ্রভুর যে মতবাদ অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্ব, এই অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্ব সর্ব সমস্ত মতবাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই চৈতন্য মহাপ্রভুর যে মতবাদ এবং তার যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাকে পূরণ করবার জন্য তিনি স্বয়ং এসে তিনি নানা রকম তার নিজজন দ্বারা বহু শাস্ত্র তিনি প্রচার করেছেন। এই পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের মধ্যে বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশে নাস্তিকবাদ রয়েছে এবং সেই নাস্তিকবাদ কিছু কিছু সামান্য আস্তিক রয়েছে, কিন্তু প্রাচ্য জগতে দেখা যাচ্ছে বেশি পরিমাণেই সেখানে আস্তিক রয়েছে এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর মতই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মধ্যে প্রাচ্য অঞ্চলে চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হন এবং আবির্ভূত হয়ে তিনি তার অচিন্ত নেতাদের তত্ত্ব তিনি স্থাপন করেছেন এবং তিনি প্রচার করেছেন। পাশ্চাত্য জগতে এই চৈতন্য মহাপ্রভুর মতকে প্রচার করার জন্য স্বয়ং ভগবান গৌরসুন্দর তিনি নদীয় শিল প্রভুপাদ এবং গুরুপাদ পদ্ম এবং বর্তমান যে গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির যিনি সভাপতি, যিনি হচ্ছে যে ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি, তাকে তিনি শক্তি সঞ্চার করে তিনি সেই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অচিন্তভাবে বাদতত্ত্বের যে সূক্ষ্ম বিচারধারা তাকে প্রচার করার জন্য তিনি পাশ্চাত্য জগতে তাকে প্রেরণা দিয়েছেন। তিনি কয়েক বছর আজ দু তিন বছর যাবত সেই চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা তিনি শুনে প্রচার করে এসেছেন এবং সেই ভগবানের কথা প্রচার করার জন্য গুরুপাদ বলেন নিকট আমি বারবার তাকে প্রণাম করি এবং তিনি তাকে শক্তি দিন। ইনার বয়স 77 বছর হয়েছে, তিনি ইহ জগতে আরও 20-25 বছর তিনি থাকুন এবং চৈতন্য মহাপ্রভু মতবাদ তিনি এবং তার ইচ্ছা পূরণ করুন। এর জন্য মধুর গুরুপাদ বলেন নিকট আমি বারবার ধরে তাকে প্রণাম করাচ্ছি, তা তিনি দীর্ঘজীবী হন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য সমাপ্ত করলাম। বন্ধু সকল শুরু করার পারণে
परम पूजनीय प्रातस्मरणीय महाराज जी, परम सत्य मथुरा की विभूति पंडित प्रवर शास्त्री जी, यहाँ विराजमान परम मदनी संत समाज, বৃদ্ধজন ভাইও মাতাও বহনো হম লোক সামাজিক কার্য বা সাংসারিক কার্য মে ব্যস্ত রহতে মহারাজ জি জেসে বন্দনী পুরুষ কি কৃপা হতি কবি কবি ভগত নাম কাজ শ্রমণ স্মরণ হয়ে যা মে তো মহারাজ জি কে চরণ মে আনে কাজ হেতু ভী সাংসারিক কার্য থাকে यानी कौन सा मैंने मेरा पुण्य था कि जब से मैं महाराज जी के चरणों में आया तब से महाराज जी जब मथुरा पधारते हैं तो कभी कभी इस पावर जी का स्मरण जरूर कर लेते हैं और मैं भी महाराज जी के दर्शन न हो तब तक शांति नहीं मिलती है। ये मथुरा एक पुण्य भूमि है, हम विश्व के तमाम श्रद्धालु इस पुण्य भूमि से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए और पुण्य प्राप्त करने के लिए यहाँ पधारते हैं, लेकिन मात्र महाराज जी का ये केंद्र है जो इस समय इस मथुरा की पवित्रता को, एक मथुरा के पवित्र जो संदेश है धार्मिकता का, उसका न्याय रह के प्रचार प्रसार करता है। अर्थ भगवान नाम संकीर्तन, समय समय पर कथा सप्ताहों का आयोजन और साथ में लोकोपकारी कार्यों की प्रेरणा भी महाराज जी के चरणों से मिलती है। महाराज जी क्षमा करेंगे, जब महाराज जी का स्वास्थ्य खराब होता है तो मैं कभी प्रार्थना कर देता हूँ तो महाराज जी बड़ा संकोच होता है कि इस अवस्था में भी आप कष्ट सह करके भी इन पामर जीवों को दिशा निर्देश करने के लिए आप स्वयं इतना कष्ट सहन कर रहे हैं। विदेश जाना आना से महाराज जी का कोई जो है, हम लोग कल्पना कोई नहीं करता है कि महाराज जी का कोई उससे कोई हेतु है या महाराज जी कोई प्रसन्नता होती होगी, लेकिन ऐसी भक्त वेदांति जी के गोलोकवास के बाद में हम सभी लोग जानते हैं कि उनने भगवत नाम का प्रचार प्रसार और चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित सन्मार्ग का जो प्रचार प्रसार किया था उनके केंद्र तो हैं, लेकिन एक जो गति थी, जो आनंद आता था किन्हीं कारणों से उसमें थोड़ी न्यूनता जरूर आई। उनकी प्यासा अपने आप जल को तलाश कर लेता है, तो यूरोप के लोगों ने वेदांति के बाद में एक महाराज जी के चरणों में ही ऐसी शांति का एक स्रोत ढूंढा, तो वह अपने भगवत नाम का पान करके अपने जीवन को धन्य कर सके। हम इस पुनीत अवसर पर, क्योंकि पहले भी ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं हमारे यहाँ, तो सही रूप से जगह जगह मंदिर हैं, जगह जगह संतों के आश्रम हैं, लेकिन विदेशों में भी एक लालसा है, भौतिक जीवन से लोग उभरे हुए हैं, उनको सब कुछ प्राप्त है लेकिन जो उनको शांति प्राप्त नहीं, तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, उन लोगों ने महाराज जी के चरणों में अपनी विश्रांति खोजी है। महाराज जी उनको जितनी चाह है उससे ज्यादा आवश्यकता हमको भी महाराज जी की, हम भी एक क्षण को भी महाराज जी को जहाँ से विलग हों उनसे तो हमको भी बड़ा कष्ट का सभी को अनुभव होता है। अभी हम लोग जाते होंगे, सभी लोग परिचित होंगे दुर्वासा ऋषि मंदिर का जो जीर्णोद्धार कार्य है, तो ये ऐसे प्राचीन तीर्थ है वहाँ ईशानपुर जिसकी तरफ किसी के ध्यान नहीं था, तो महाराज जी का ये भी एक जो है एक सोचने का विषय है कि जो प्राचीन तीर्थ हैं, पवित्र स्थल हैं, उनका भी जीर्णोद्धार हो, उनकी भी मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा हो, तो इन सब चीज़ों में महाराज जी लगे हुए हैं। संघ में वहाँ के जो सौभाग्यशाली जीव हैं, जो कुछ उनके पुण्य उदय हैं कि महाराज जी के वचनामृत से, महाराज जी के आशीर्वाद से वो भी भवसागर को पार करना चाहते हैं, हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं, पुनः पुनः निवेदन करते हैं तो महाराज जी उनका उद्धार करें, उनको दिशा निर्देश दें। संघ में मथुरा और ब्रजभूमि के उनके जो चरण सेवक हैं उन पर भी कृपा करते रहें, और हमको जो हम भटके हुए हैं सांसारिक कर्मों में उनको भी ऐसे ही भगवत नाम का स्मरण कराते हुए दिशा निर्देश देते रहे। पुनः पुनः महाराज जी चरणों प्रणाम करता हूँ।
ज्ञाता पंडित श्री मनोहर लाल जी के राजगीरी के नमस्ते स्पृशभाय सात्वतम विदुर काष्ठाय मुहुक्योगिनम निरस्त साम्यातिशये नराधसा स्वधामनि ब्रह्मणे लंशते नमः। श्री राधा वदनेन्दु श्री पान मत चकोरकम् गोवर्धन धरम बंदे ब्रजराज किशोरकम्। सर्वादौ सर्वदेवाधिपतिम केशवम प्रणम्य प्रातस्मरणीयाः श्री गुरुचरणाः लोक बोधन तत्पराः साधीयांसाः साधवः भक्तवेदांत नारायण महाभागाः अथ च लोक सेवा तत्पराः स्वनामधन्याः श्री गोपेश्वरजी महामहोदयाः अथ च सन्मार्ग मनोवर्तिनः साधीयांसः साधवः वरीयांशो विद्वांसः प्रियबान्धवाः मातरो भगिन्यश्च। बड़े ही आनंद का विषय है कि जब यह जीव परमात्मा के विषय में अपने भावोद्गार प्रकट करता है। श्रीमद् भागवत एक ऐसा पदार्थ है जिसने व्यास चिंता का समापन किया। लोक हितैषी व्यास जी को लोकोपकारिणी चिंता हुई जिसका समापन नारद ने भागवत की रचना पर ही संपन्न किया। नारद जी के उपदेश देने के बाद भी व्यास जी ने समाधि लगाई तो समाधि में चार तत्वों का दर्शन किया। अपश्यत पुरुषम पूर्णम चालू भागवत में पूर्वम पाठ है पर श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज इसे पूर्णम मानते हैं। तो पहले तो अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच तदपाश्रयाम यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोपि मनुते नर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षाद् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वां चक्रे सात्वत संहिताम्। इन चार श्लोकों में ये बताया सबसे पहले व्यास जी ने श्री केशव भगवान का दर्शन किया और उसके बाद माया का दर्शन किया जो ब्रह्म के पास जाने वालों को रोक देती है। उसके बाद तीसरा जीव का दर्शन किया जो जीव यथार्थता को माया के वशीभूत होकर के अयथार्थता की ओर दौड़ता है और अयथार्थता पदार्थों को यथार्थता में परिणत करता है या मायाकृत भ्रांति के का पात्र बन जाता है। तो अब जीव ब्रह्म की तरफ जाएगा तो माया रोक देगी। तो अब माया से तरने का क्या उपाय है? तो देखा कर्मयोग की तरफ जाएं या ज्ञानियों की तरफ जाएं या साक्षात भक्ति योग का अनुसरण करें। तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि ज्ञान पुरुष है और माया स्त्री है। कैसा भी पुरुष हो स्त्री के मोहक स्वरूप पर मोहित हो जाता है परंतु नारी के स्वरूप पर मोहित नहीं होती है। मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी यह चरित अनूपा। नारी के रूप पर नारी मोहित नहीं होती है इसलिए माया के संपूर्ण वैभव को दबाने वाली यदि दूसरी नारी है तो भक्ति महारानी की जय। तो इस भक्ति को बताया कि अनर्थो पसनम साक्षात भक्त योगम। ज्ञानियों के विषय में सप्तशती जो देवी के भक्त जिसे पाठ किया करते हैं उसमें बताया ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलात् आकृष्ट मोहाय महामाया प्रयच्छति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी मोहित करने वाली ये माया को समझकर व्यास जी को दर्शन हुआ कि भक्ति ही माया से बचा सकती है, इसीलिए यह भागवत का नाम भक्त संहिता बनाया। ये भक्ति प्रदायिनी है, भागवत के सिवाय भक्ति की प्राप्ति होना अन्यत्र संभव नहीं है। तो भक्ति कौन सी की जाए, तो उपनिषद में लिखा स आत्मानं द्वेधा अपातयत पतिश्च पत्नी च अभवताम। उस परब्रह्म ने अपनी आत्मा को दो भागों में विभाजित कर दिया, आधा भाग कृष्ण और आधा भाग श्री राधा रानी की। तो महाराज ये ब्रजेश्वरी ब्रह्मानु नंदिनी किशोरी राधा और कृष्ण इन दोनों में कोई अंतर है ही नहीं, एक गौर तेज है और एक श्याम तेज है। भगवान से पूछा कि महाराज आप भी गौर बन जाते, आप श्याम क्यों बने, और यदि आप श्याम बने तो मुझे भी श्यामा बना देते। तो भगवान ने उत्तर दिया कि आप सुवर्णवत हैं और सोने की जो परिचय है वो कसौटी पर घिसकर होती है। जब बड़े बड़े सराप कसौटी पर काले पत्थर पर सोने को घिसते हैं तो उस स्वर्ण रेखा से स्वर्ण का परिज्ञान होता है। इसीलिए श्री राधा का जो प्रेममय स्वरूप है वो कृष्ण की कसौटी पर ही घिसा जाए, इसलिए मैं अपने को श्याम बनाया और आपको गौर बनाया। पर है राधा तत्व और कृष्ण तत्व में कौन बड़ा और कौन छोटा इस प्रपंच में पढ़ना भ्रांति है, क्योंकि दोनों ही एक हैं। इस प्रकार वर्णन किया। अभी मैं भक्त वेदांत नारायण जी के विषय में कुछ कह रहा था। हमारे यहाँ वेदांत दो है, एक ज्ञान वेदांत और एक भक्ति वेदांत। तो मैं जब भी आता हूँ इनका नाम ध्यान आते ही मुझे भक्ति का वेदांत याद आ जाता है। ज्ञान वेदांत की उपनिषदों में चर्चा अलग है, परंतु भक्ति वेदांत की जो चर्चा है वो तो महाराज बड़ी रसात्मक चर्चा है। इसीलिए भागवत को रस बताया, पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भूमि भावका। अब एक प्रश्न ये मैं बताना चाहता हूं कि श्री सुखदेव जी की आराध्य श्री राधा रानी थी, अब उनको प्रत्यक्ष नाम लेकर प्रणाम करें तो सुखदेव जी को 6 महीने की मूर्छा आ जाती है, तो परीक्षित का हित बिगड़ जाएगा, और बिना राधिका जी को प्रणाम किए बिना वह आगे भागवत का प्रवचन कर नहीं सकते। तो मैंने जो भी मंगलाचरण किया श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने इसमें श्री राधा सहित कृष्ण के प्रणाम का वर्णन किया। नमो नमस्ते स्तु ऋषभाय सात्वतम, सभी सात्वत भक्तों के ऋषभ श्रेष्ठ श्री कृष्ण को मैं नमो नमः बारंबार नमन करता हूं। विदुर काष्ठाय मोह कुयोगिनम, या कुयोगिनम की दो व्युत्पत्ति की, या तो कुत्सिता योगिन कुयोगिन तेषां कुयोगिन विदुर काष्ठा भगवता काष्ठा दिगभी दूर तरह, भगवान की दिशा भी उनको योगियों को दूर है। योगिना मद सर्वेशम मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मत इति गीता वाक्य। अथवा कू शब्द पृथ्वी वाचक है, कौ पृथिव्याम ये योगिनः तेषां कृते श्री कृष्णस्य राधाया दिगभि दूरतरा, दिशा भी दूर है। कैसे है वो कि निरस्त साम्यात सयेन राधसा, यहां राधा को राधस शब्द से प्रयोग किया, कैसी है वो राधा कि निरस्त साम्यात सेनो, न जिसके कोई बराबर है और जिससे कोई अधिक है। ऐसी श्री किशोरी जी राधा जी के संग ब्रह्मणी ब्रह्म स्वरूप जो यह मंदिर है उसमें श्री राधा के साथ नित्य विहार करने वाले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मण रमुषते नमः, रमुषते चतुर्थी एक वचन है, उनसे साथ रमण करने वाले श्री राधा कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा सुखदेव जी प्रणाम करके मंगलाचरण में फिर आगे वर्णन करती है। अब प्रसंगोपात हम ये लें कि भक्त वेदांत जी जो बार बार हमें छोड़ करके विदेश जाते हैं, विदेश वाले तो प्रसन्न होते ही हैं, इनका बार बार यहाँ से जाना क्यों? तो श्रीमद् भागवत के आधार पर जब गर्गाचार्य गोकुल में आए तो नंद बाबा ने जो निर्णय लिया वही निर्णय हम भक्त वेदांत की यात्रा में समझते हैं। जो अल्प बुद्धि उसी का दो मिनट से संक्षिप्त वर्णन करता हूँ। महद विचलनम नृणाम ग्रहिणाम दीन चेतसाम निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्। महात्मा लोग जो अपने आश्रम या अपने घर से निकलते हैं तो उनके निकलने का उद्देश्य, उनके निकलने का तात्पर्य क्या है? यह नंद बाबा कह रहे हैं कि नृणाम मनुष्यों के और गृहिणाम जो गृहस्थाश्रम में पड़े हुए हैं, दीन चेतसाम जिनका चित्त उस दीन दयालु की कृपा की अभिकांक्षा के लिए दीन बन गया है, ऐसे लोगों पर कृपा करने के लिए निःश्रेयसाय माने कल्याणाय, उनके ऊपर कल्याण स्वरूप भगवान महात्माओं को प्रेरणा देते हैं और वो अपने स्थान को छोड़कर उन दीन भक्तों के कल्याण के लिए विदेश यात्रा किया करते हैं। तो निःश्रेयसाय भगवान कल्पते महद विचलनम, अन्यथा किमपि कारणम नास्ति, अन्यथा और कोई इसमें कारण नहीं हो सकता है। तो अंत में हम केशव भगवान से प्रार्थना करें और यह बात कहें महाराज ये शीघ्र ही समुद्धाराय भक्तानाम, समुद्धाराय भक्तानाम विदेशे वसतम कलौ यात्रां कृत्वा समायान्तु भक्ति वेदांतु साधवः। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जो विदेश में उदर के लिए निवास कर रहे भक्त हैं उन भक्तों के सम्यक उद्धार के लिए कलयुग में उनका भी उद्धार हो जाए, इसीलिए आप अपनी शोभन मंगलमयी यात्रा को शीघ्र समाप्त करके इस कृष्ण जन्मभूमि में शीघ्र ही वापस लौटे ऐसी हम कामना करते हैं। अंत में थोड़ा सा और कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। मथुरास्था वयम सर्वे, मथुरास्था वयम सर्वे केशवं प्रार्थयामहे, यत्कृपातो हि भवतां स्वास्थ्यं नित्यं विवर्धताम्। हम मथुरा के स्थित जितने भी भावक और आस्तिक ईश्वर को मानने वाले यहाँ के जन समुदाय हैं वो सभी मिलकर हम केशव भगवान की प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से आपका विदेश जितने दिन रहे उतने दिन शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, और यही हम यमुना जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो अपने स्वास्थ्य को बढ़ाते हुए वहाँ का जन कल्याण करते हुए शीघ्र पुनः हमें आकर दर्शन दें। इन कामना के साथ मैं अपने तक लघु वक्तव्य को विराम देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ यमुना के किनारे राम घाट पर रोज थोड़ा प्रवचन देता हूँ, उसका समय होने वाला है, इसलिए मैंने भारत श्री से आज्ञा लेकर के पहले बोल दिया हूँ। नहीं मैं तो यहाँ अंतिम 9 बजे तक रहने वाला हूँ, महाराज श्री मुझे आज्ञा दे।
ज्ञानञ्जनशलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणगोस्वामीति नाम्ने। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसदिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इसको ना ऐसे खोल के रखना है।
यहाँ के इस कार्यक्रम का मुझे आज ही पता चला दिल्ली में, बड़े ही उतावलापन हुआ है दिल्ली से यहाँ आने का, और मुझे मौका भी मिल गया और महाराज श्री जी की कृपा से यहाँ पे मुझे बोलने का भी मौका मिल गया। पर मैं अंदर की बात बताता हूँ कि इतने वैष्णवों के सम्मुख और गुरु जी के सम्मुख मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं खड़े होने में। तो फूले हुए हाथ पैर पैर और लड़खड़ाती जुबान से जो कुछ मैं बोल पाऊंगा आपको सुनने के लिए मजबूर करूंगा। अभी आते आते दो चार पंक्तियां मेरे से जो लिखी गई हैं वो सुनाता हूं, फिर मैं अपनी कुछ पुरानी पंक्तियां जो मैंने महाराज जी के लिए लिखी शायद सुनाई भी हूं महाराज जी की विदेश यात्रा से संबंधित, वो सुनाने की कोशिश करूँगा। गुरुदेव आपके प्रेम सरोवर में हमारा भक्ति कमल खिलता है। गुरुदेव आपके प्रेम सरोवर में हमारा भक्ति कमल खिलता है, आपके दर्शन मात्र से अवर्चनीय सुख मिलता है। आपके दर्शन मात्र से अवर्चनीय सुख मिलता है। ना जाने क्या मंत्र जपते हो, सबको मंत्र मुग्ध कर रखते हो। ना जाने क्या मंत्र जपते हो, सबको मंत्र मुग्ध कर रखते हो। लम्हा लम्हे से यूं कहता है, लम्हा लम्हे से यूं कहता है, कोई ऐसा लम्हा मिल जाए। लम्हा लम्हे से यूं कहता है, कोई ऐसा लम्हा मिल जाए, दो बातें गुरु से हो जाए और दिल का कमल खिल जाए। दो बातें गुरु से हो जाए और दिल का कमल खिल जाए। शब्द आपके सुनने को ये कण हमारे तरसते हैं, शब्द आपके सुनने को ये कण हमारे तरसते हैं। आपके व्यक्तित्व से हम भक्तों में प्राण बरसते हैं, आपके व्यक्तित्व से हम भक्तों में प्राण बरसते हैं। मैं हृदय की बात खोलकर चरणों में निवेदन करता हूँ, मैं हृदय की बात खोलकर चरणों में निवेदन करता हूँ। भक्ति करने की बात दूर, मैं भक्ति में छेदन करता हूँ। फिर भी एक राज गुरुवर यहाँ पे भेदन करता हूँ। आपके सुनने देखने की गुरुदेव प्रबल आस है, आपको सुनने देखने की गुरुदेव प्रबल आस है। मेरी अभिलाषा के दायरे का मात्र यही व्यास है, मेरी अभिलाषा के दायरे का मात्र यही अभिलाष है। क्या आपके अधरों की मुस्कान मेरे प्राण है श्वास है, आपके अधरों की मुस्कान मेरे प्राण है श्वास है। ये चंद पंक्तियां आपका धैर्य धारण करना पड़ेगा जैसा भी है, लेकिन अपने उद्गार गुरुदेव के लिए जो विदेश में जाते हैं, पहले भी शायद सुनाए हो तुम्हें, ये याद नहीं, ऐशो इशरत की चाहत से कुछ भोगी यहां से जाते हैं। देखिए लोग विदेश क्यों जाते हैं, इसका मैंने वर्णन किया है। ऐशो इशरत की चाहत से कुछ भोगी यहां से जाते हैं, धन दौलत शोहरत के खातिर कुछ लोभी यहां से जाते हैं, अपना उल्लू सीधा करने इनमें से कुछ योगी हो जाते हैं, अपना उल्लू सीधा करने इनमें से कुछ योगी हो जाते हैं। ब्रज भाव की भक्ति लेकर कौन यहां से जाता है, ब्रज भाव की भक्ति लेकर कौन यहां से जाता है, शुद्ध प्रेमा भक्ति का उपदेश जाके कौन सुनाता है। ये तो दिव्य जगत की बातें महाप्रभु की कृपा से आती हैं, कोई उनका निज जन जाए राधा जी जिनको चाहती हैं, कोई उनका निज जन जाए राधा जी जिनको चाहती हैं। कृष्ण कृपा जब राधा जी की, देखिए यह मेरे अपने अपने विचार है, करुणा और महाकरुणा उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। कृष्ण कृपा जब राधा जी की चाहत बन के आती है, महाप्रभु के रूप में वही करुणा महाकरुणा बन जाती है। तो करुणा क्या, महाकरुणा क्या? करुणा उसको कहते हैं जो छप छप टपका करती है, महाकरुणा उसको कहते हैं जो रिमझिम जोर बरसती है। विदेशों में सुनते हैं धूल धाल नहीं उड़ती, मिट्टी नहीं उड़ती है, उस पर विचार रखा है। कहते हैं विदेशों में धूल नहीं देखी जाती, प्रेम रहित उस शुष्क धरा पे माटी उड़ने की ताकत नहीं पाती, प्रेम रहित उस शुष्क धरा पे माटी उड़ने की ताकत नहीं पाती। कृष्ण प्रेम से विभोर ब्रज रज, कृष्ण प्रेम से विभोर ब्रज रज पुर जोर घुमर के उड़ती है, भक्त भगवान परिकर की करुणा या धूली बनकर बिखरती है, भक्त भगवान परिकर की करुणा या धूली बनकर बिखरती है। चिंतामणि ब्रज रज की करुणा कुछ करने को बेताब हुई, ब्रजपुर नवदीप साथ समेटे महाकरुणा अब नायाब हुई, नायाब करुणा की रजकण गुरुदेव में आत्मसात हुई, महाप्रभु की रूपानुग कृपा जग के सम्मुख साक्षात हुई। आज हमारे गुरुदेव उस करुणा के साक्षात हैं। राधा जी की मरीजी से गुरुदेव के कृपा के पात्र हुए, और भाग्य हैं उन सब के जो गुरुदेव के निष्ठ छात्र हुए, और भाग्य हैं उन सब के जो गुरुदेव के निष्ठ छात्र हुए। ये अभी इन्होंने भी बताया ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी के कई सारे लोग हैं जो कि महाराज जी की कृपा प्राप्त करने के लिए विदेशों में तरस रहे हैं, उसी पे एक नजर है। प्रभुपाद स्वामी जी का चमन सूखा होने लगा, गली की दर माली की दरकार हुई, हर पौधा सिसक रोने लगा, माँ प्रभु की करुणा सागर से बदली करने बोछार चली, उजड़ा चमन बसाने देखो बासंती बहार चली, अद्भुत कैसी बात हुई है सहरा में रिमझिम बरसात हुई है, अनुग्रह भक्ता नाम वाली करुणा एक वैष्णव में साक्षात हुई है। अब स्वागत के ऊपर है, हम लोग यहाँ स्वागत के हेतु यहाँ बैठे हैं। मथुरा में स्वागत होता है, कभी दिल्ली में स्वागत होता है, जहां भी स्वागत होता है दलबल से दिल से होता है, किंतु हम स्वागत इनका कर पाए हमारे बस की बात नहीं, हम महिमा इनकी गा पाए इतनी महिमा पास नहीं, बस खुद को अर्पण कर जाए कुछ ऐसा समर्पण हो जाए, इस कर्तन से कुछ कृपा मिले और शुद्ध कीर्तन हो जाए। ये बात सुकृति के बस की नहीं, फकत कृपा अहेतु की पाते हैं, जब ऐसे गुरु वैष्णव पास हमारे आते हैं, जो वेद शास्त्रों में पारंगत अनुभूति की बात बताते हैं, वैरागी कृष्ण युक्त ऐसा सबको युक्त वैराग्य जगाते हैं, ऐसे गुरुवर को हम तहे दिल से शीश नवाते हैं। वांछा कल्प कर ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तरलये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम अस्मदीय परमाराध्यतम ओम विष्णुपाद अष्टोत सतस्य समात भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी किसी चरण सरोज में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हैं। हम लोगों के जीवन स्वरूप जो प्राणों के आधार जिनसे सारी शिक्षाएं सब कुछ जिनके चरणों में प्राप्त हुआ ऐसे अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत सतस्य समात भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में हम असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हैं। उपस्थित माननीय अतिथिवर्ग एवं पूज्य वैष्णवजन मातृबिंद सबको यथायोग्य प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज यहाँ पर श्रील महाराज जी की विदेश यात्रा के शुभ अवसर पर अभी अभी पूर्ववर्ती वक्ताओं से भावपूर्ण अति सुसिद्धांतपूर्ण विचार एवं वक्तव्य को श्रवण किए हैं। इसके बीच में हम कुछ वर्णन करें हमारी यह अधृष्टता मूर्खता है। महाराज जी के श्री चरणों में हम केवल नमन कर सकते हैं कि वाणी के द्वारा कहें कि महाराज जी आपका अभाव या आपके बिना हमें कष्ट होता है, आपको देख करके हमें सुख होता है, यह हम नहीं कह सकते, ना ही हम वर्णन कर सकते हैं। केवल इतना ही अनुग्रह करें, सदा ही आपके चरणों में आश्रय मिल जाए और निरंतर निष्कपट रूप से सेवा की भावना बन जाए, क्योंकि श्रीमद् भागवत शास्त्र का अध्ययन करते हुए यही पाया जाता है। आपके चरण सानिध्य में रहकर श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हुए यही सर्वप्रथम शिक्षा मिली है। श्रीमद् भागवत की शिक्षा यही है कि निष्काम निस्वार्थ प्रेम, जहां पर जीवन निष्काम होगा निस्वार्थ होगा उतना ही जीवन विशुद्ध बनेगा और निर्मल पवित्र होगा। ऐसे पवित्र निर्मल हृदय में ही भक्ति ठहर सकती है, अन्यथा कामना वासना जहां पर स्वार्थ है, जहां स्वकाम भावना है, वहां भक्ति शुद्ध रूप से प्रकाशित नहीं होती। अभी अभी श्री भक्ति वेदांत पर विचार भी हुआ है, जिसमें भक्ति का तात्पर्य सरस भावनामय, भक्ति कभी अपना सुख नहीं चाहती है, प्रेम कभी अपना सुख नहीं चाहता है, उसका तात्पर्य प्रेमास्पद की सेवा करना, उनका प्रतिविधान करना, जहां पर अपने सुख की चाह है वहां स्वार्थ भाव आ जाता है, वहां प्रेम नहीं वहां काम हो जाता है। इसलिए भक्ति में एकमात्र सबसे पहले शिक्षा है भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए अन्नाभिलाषिता सुन्नम उत्तमा भक्ति की बात कही है। समस्त प्रकार की कामना वासनाओं को त्याग कर निष्काम निस्वार्थ रूप से अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम तत्सुख सुखित्व भावना, उनके प्रतिविधान में उनके सुख में दुखी उनके दुख में दुखी, यह भावना जब बन जाए तब गुरु वैष्णवों की सेवा हो, तब प्रभु की सेवा हो जाए। श्रील महाराज जी से गुरु वैष्णवों से यही सुनने को सीखने को मिला है कि हृदय को निष्कपट बनाया जाए। प्रत्येक गुरु सेवक को चाहिए कि अपने जीवन से अपने हृदय से कामना वासना को निकाल करके फेंक दें, गुरु वैष्णवों की सेवा में अपने जीवन को रगड़ रगड़ कर उसमें घिस दें,
अन्यथा संभव नहीं। श्रीमद् भागवत की शिक्षा में सर्वप्रथम जब किसी नारद जी महाराज जी ने श्रीमद् कृष्ण दैपायन वेद व्यास जी को अपने जीवन कहानी के साथ में श्रीमद् भागवत रचना का उपदेश दिया है, उसमें उन्होंने यही कहा कि हमने जंगल में जाकर के एकांत में प्रभु से प्रार्थना की, बहुत रोता रहा और प्रभु का दर्शन मिल जाए यही लालसा रही। तो उन्होंने आकाश मार्ग में एक बार मात्र हमें दर्शन दिया, दर्शन दे करके यही कहा, नारद बड़ी कष्ट की बात है, तुमने जो हमारा भजन किया तुम्हारी उत्कंठा के वजह से हमने तुम्हें दर्शन दिया केवल यही एक बार के लिए, इस जन्म में और दर्शन नहीं होगा। हाँ सत्सेवया दीर्घयापी दीरामयी जाता मति, साधु संतों की सेवा अदीर्घयापी अति शीघ्र, साधु संत गुरु वैष्णवों की सेवा करें तो उससे मेरे बीच में चित्त शुद्धि रूप से लगेगा। आज हम देखें कि इतने उम्र में सुले महाराज जी इतना मेहनत करते हैं, इतना कठोर परिश्रम करते हैं, दिन रात सर्व क्षण निरंतर गुरु सेवा में भगवत सेवा में लगे हुए हैं कि हम इतना प्रयास करके भी उसका एक अंश एक कणा भी हम नहीं कर पाते हैं। और हम उनके एक आना भी हम जीवन में पूरा नहीं कर सकेंगे और न हम कर पाएंगे, फिर भी हम लोगों को प्रयास करना जरूरी होता है। गुरु वैष्णव किस लिए इतना परिश्रम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, उनको क्या चाहिए? उनको कुछ भी नहीं चाहिए। एक दिन महाराज से नहीं हम लोगों को सुनाया था, देखो हम लोगों के जीवन में क्या प्राप्ति है, क्या चाहिए? कुछ तो चाहिए नहीं। क्या हम लोगों को खाने पीने को चाहिए? रुपए पैसे चाहिए, धन दौलत चाहिए, भोग वैभव चाहिए या प्रतिष्ठा चाहिए? ये सब की आवश्यकता तो नहीं होती है। तो हम लोग किस लिए हैं? जो अंतरंग भाव है भगवान श्री सचिनंदन गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु जी जो कि रसराज महाभाव स्वरूप हो करके अवतीर्ण हुए, जिस प्रेम का आस्वादन किया, ब्रज के गौरव को प्रकाशित किया, जिस भाव का आस्वादन किया गौड़ीय वैष्णव उस ब्रज रस के रसी और श्री रूप गोस्वामी प्रभु के चरणों के धूल बनने को जो चाहते हैं, जन्म जन्म में उनकी चरणों की आस करते हैं, ऐसे रूपानुग विचारधारा में जो स्नातक, ऐसे गौड़ीय वैष्णव विशुद्ध रूप से ब्रज भक्ति जो ब्रसोहर नंदिनी श्री राधा जी की चरणों के किंकरी बन करके जो प्रेम रस की जो चरम उत्सव है, उस चरम सीमा पर पहुंचे हुए अपने को धन्य मानते हैं, उसी में अपने को गर्व मानते हैं, ऐसे गौड़ीय वैष्णव रसिक संत जगत में सर्वत्र भ्रमण करते हैं, उनका उद्देश्य यही है, जनस्य तृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायोऽयं चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। जनस्य तृष्णात् विमुखस्य दैवात्। आज संसार के लोग भगवान को भूले भटके हुए इधर उधर भाग रहे हैं, भौतिक विकास की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु उनमें शांति नहीं, सुख नहीं, वास्तव कल्याण नहीं। वास्तव कल्याण जीवन की चरम शांति और जीवन की रसधारा कहाँ है? भक्ति में ही है, जहाँ निष्काम निस्वार्थ भक्ति है। ऐसी भक्ति में प्रवेश कराने के लिए अनुग्रहम चरंति नूनम, जीवों के प्रति जो अकातर करुणा, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जो अमंदोदय दया है, भक्ति विनोदया, जो भक्ति में विनोदनकारी जो अप्राकृत अमंदोदय दया है, अप्राकृत कल्याण की चिंता न होना, ऐसी निष्कपट करुणामय जो दया, उस दया का भंडार उजार करते हुए विश्व जगत को संदेश प्राप्त कराने के लिए जाते हैं। यह जो यात्रा है यह विजय यात्रा है। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, हमारे भारत वर्ष में भी बड़े बड़े राजाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में आया है। महाराज अम्बरीश जी ने सप्तद्वीपा वसुंधरा ससागरा समस्त पृथ्वी का शासन किया, समस्त देश में विजय प्राप्त किया। उनका जीवन कहानी क्या था? जो भक्तिमय जीवन, संपूर्ण जीवन और संपूर्ण अंग को अपने भक्ति में ही लगाया, भगवान की भक्ति में, और उनकी महिमा प्रकाशित हुई। तो समस्त देश पर जो विजय प्राप्त किया, शासन किया, केवल छत्र बल पर, शास्त्रों के बल पर नहीं, शास्त्र भक्ति के बल पर। आज हमारे भारत के जो महारत्न महाविभूति हैं, आज विशेष करके हमें इतना आनंद, इतनी खुशी की बात है कि मथुरा भूमि, ब्रज भूमि, और उसमें भी मथुरा है मथुरा मंडल, और उस मथुरा भूमि में श्री केशव जी गौड़ीय मठ, जिसका यह विशेष सौभाग्य जहाँ का कि जहाँ से पूर्ववर्ती जो कि श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, यहाँ से श्री परम गुरु महाराज जी की आज्ञा प्राप्त कर, श्री प्रभुपाद जी की करुणा को सुरधारण कर विदेश की यात्रा की, और उन्होंने विदेशों में सर्वत्र सनातन धर्म श्री चैतन्य महाप्रभु जी के वाणी को प्रचार प्रसार करने के लिए अथक प्रयास किया, और वह प्रयास चैतन्य महाप्रभु जी के अहितगी करुणा के द्वारा वर्षित होकर के चारों ओर फैलता गया, और उसके ऊपर में श्री महाराज जी यहीं से श्री केशव जी गौड़ीय मठ से विदेश की यात्रा करते हुए जो वृषभानंद ने श्री राधा जी की आज्ञा माला प्राप्त की है, और उनकी करुणा को प्राप्त करते हुए जो कि विदेशों में सर्वत्र उनकी करुणा और उनके रस भंडार को सर्वत्र प्रदान किया है, ऐसे भक्त जनों को अनुग्रहित किया है। सभी लोग कहते हैं भले ही नास्तिक हैं, उन हजारों लाखों करोड़ों नास्तिकों के बीच में से उन रत्नों को संग्रह करके जिनके हृदय में भक्ति पुष्प को विकसित कर दिया है, इसके लिए हम सब आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी बात है कि इस प्रकार श्री महाराज जी ने जो करुणा वर्षण किया है, श्रीमद् भागवत का, श्रीमद् भागवत गीता का, हमारे वेदांत का तात्पर्य जो भक्ति है, इसको प्रसारित करते हुए जिन्होंने अपनी करुणा को वर्षित किया है, सर्व के प्रति अहत की करुणा वर्षण किया है, ऐसे श्रील महाराज के चरणों में हम शत शत नमन करते हैं, हम सब पर अहित की करुणा करें, अति शीघ्र हम उनका दर्शन करें। अभाव में भी अभाव की अनुभूति न हो, यही प्रार्थना, निरंतर उनकी कृपा अनुभव होते वंशागर होते हैं।
इस अवसर पर दो शब्द कहने की कृपा करें श्री शोधा सिंह जी।
वहीं पर माइक लगा दो।
सबसे पहले मैं परम पूज्य महाराज जी के चरणों में शत शत नमन करता हूँ। इसके उपरांत सभी उपस्थित भक्त जो यहाँ सभी उपस्थित हैं, मैं उनका भी नमन करता हूँ। मेरी 15 साल की सेवा के बाद यहाँ नियुक्ति हुई। नियुक्ति भी ऐसे समय में हुई, यहाँ विश्व महायज्ञ का आयोजन हो रहा था, तो मैं अपने को बड़ा असमंजस की स्थिति में पा रहा था। इसके बाद मैं कुछ समय रहा, फिर मुझे गुरु जी के चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद अब मैं सोचता हूँ कि यदि इस संपत्ति में मेरी नियुक्ति नहीं हुई होती तो मेरा जीवन अधूरा ही रह गया होता। चूँकि महाराज जी के चरणों की कृपा मेरे ऊपर नहीं रहती, महाराज जी का मुझे आशीर्वाद नहीं मिलता। महाराज जी जिस महान उद्देश्य को लेकर विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, हमारे देश की धर्मपता का विश्व में फैला रहे हैं, और ऐसे परम कर्तव्य को लेकर गुरु जी बाहर जाते हैं, यह हम सब लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक सौभाग्य की बात है। गुरु जी वहाँ पहुँच कर सभी कार्यों को ठीक से संपादित करके लौटें, यही हमारी प्रभु से कामना है, यही हमारी कृष्ण जी से परमपिता से प्रार्थना है। गुरु जी निश्चित रूप से महान है, उनके सानिध्य में उनके साथ में जो आता है उसको अनुभव होता है कि वास्तव में महान गुरु की कृपा उनके ऊपर है। मैं भी अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि महान गुरु जी के चरण की कृपा मुझे मिल रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।
श्री ब्रजनाथ दास जी से प्रार्थना करूंगा तो वह भी इस अवसर पर दो शब्द कहने की कृपा करें। श्री ब्रजनाथ दास जी।
ओम ज्ञानचंद्रमस्य ज्ञानेन्द्रासनकचक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पातरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। So first I'd like to offer my humble obeisances unto my spiritual master, Om Vishnupada, Paramahamsa Parivrakacharya, Astadhara, Srisimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Then I want to offer my humble obeisances unto all the acharyas in our Guru Varga who have come in the line of Srila Rupa Goswami. And I offer my humble obeisances unto all the senior Vaishnavas present, unto all the devotees who have come this afternoon from Delhi and everywhere. It's very hard to speak this afternoon for me. I have not realized the greatness of personality, the transcendental personality of Srila Maharaj. So whatever I can say is my little realization which I have gathered in the years that I have associated with the devotees and with Srila Maharaj. First, I want to express how fortunate everyone is who is living in India, particularly in Mathura, Vrindavan, especially all who come here regularly in case of the Gaudiya Math, and in our mat in Vrindavan, and who are residing there. It is so natural for those who live here to remember Krishna, to hear about Krishna, to do so many different kinds of services to Krishna, to Siddhigraha, and to the pure Vaishnavas who are residing in the holy places. So, you are all very fortunate. One of the advices in scripture is that we should always remember Krishna and never forget Krishna. So for me, I do not know who is Krishna. So how to remember Krishna is not easy. Never forget Krishna, it is in the same category. But I observed that the devotees who are coming here, they have so much understanding who is Krishna. And all the activities which are going on in Mathura and Vrindavan are always related with Krishna. So again, I want to express how fortunate all of you are. And I am very thankful that you tolerate persons like myself and so many Westerners who are coming here who have a little interest in what is Krishna consciousness, and that you kindly help us to have some idea what is Krishna consciousness. Now, being born in a Western country, I have some idea how unfortunate people are in Western countries. We've been brought up in a very materialistic society where no one knows what is God, what is speak, who is Krishna. We have been brought up from birth with so many different kinds of activities which are not helpful to remember a loving relationship with God, what to speak of Krishna. So by the kind mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, his direct associates, so much information has become available now in the English language, by which we have heard some, we have received some information, what is Krishna consciousness and what is Krishna, but still only some idea we have, no realization. Our heart is very hard. Yeah. But by great mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, his devotees, they are very kind, and so kind that they leave Vrindavan, they leave holy places to go out and canvass on behalf of Krishna. So one of these devotees has come to Western countries. We all know Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj, who has kindly come to Western countries and distributed information about Krishna consciousness. He has attracted so many Western people to take an interest in Krishna consciousness. So there is some, we may say some general idea, what is Krishna consciousness, but again, it is very hard for us. So, although for those who have been born in India and what to speak, they are very naturally attracted to Krishna. They know what is the goal. So easy they catch it. But for us, unless we have that kind of association that comes from Vrindavan to Western countries, it's very hard to give up our conditioning in Western countries. So Srila Maharaj, he has very kindly come in the footsteps of our acharyas on their behalf to again remind us what is pure bhakti. Swami Maharaj, Srila Swami Maharaj has made a platform, and there are many living entities in Western world who are desiring to have some more understanding of Krishna consciousness. So Srila Maharaj is so kind, very patiently, he introduces the ideas of pure bhakti. Anya bilasita sanyam jnana karma dhyanabhitam anukulyana krishna nusudanam bhakti rutana. He reminds again and again, what is the goal? What we should remember? Yeah? Our goal is to develop love for Krishna. What kind of love for Krishna? That love which is residing in the hearts of the eternal associates of Krishna in Vrindavan. This is the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. How to achieve that? Very kindly our acharyas have given the process. Srila Rupa Goswami has given wonderful instructions in Bhakti Rasamrita Sindhu. His followers, Srila Vishwanatha
Chakravarti Thakur has given a wonderful explanation again in Sri Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu. And Srila Maharaj is so kind that very patiently he encourages us to catch the idea, what is the goal in our life. So I want to thank on behalf of all the Western devotees that I know how hard it is for you to let Srila Maharaj go to Western countries. Many times I have to hear how I am cruel to take Maharaj. I know I am not taking Srila Maharaj. I am nothing. He is so kind that he goes there and he allows us, but we do some little seva. But I know that I am not qualified to do any seva unless Vaishnavas bless me. So I request you, don't be angry with me, be kind. And I pray that you may also bless me, that I may have some realization of the wonderful nectarian Harikatha, which Srila Maharaj is always so wonderfully distributing, nourishing the Bhakti Lata Bridge, the seeds of Bhakti everywhere. And again now, going to Western countries where so many devotees are thirsty to receive real nourishment. Yeah. That nourishment which Chaitanya Mahaprabhu wanted us to give. So thank you so much for allowing Srila Maharaj to go to Western countries, and I promise you whatever I can do, if Srila Maharaj allows me to run there any little service, then I hope that quickly he will return in Vrindavan. Wherever we go, always Srila Maharaj is telling, I want to go at once to Vrindavan. Jump in. So he's always remembering Vrindavan, we know. And all the wonderful devotees who are here, the loving relationships with Srila Maharaj. So thank you very much for your wonderful association, and I also hope and pray that I may come back very soon and again be in your association.
समय बहुत हो चुका है, आरती भी होगी. अब नरेश कुमार जी, नीरज डेरी, ये दो शब्द बोलेंगे. इसके बाद में मैं दो शब्द बोल करके फिर आरती हूँ. यहाँ से यात्रा कर रहा हूँ दिल्ली. दिल्ली में दो दिन रहने के बाद 21 तारीख में हम यहाँ से हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूरोप के कुछ और देशों में भक्ति का प्रचार कर, फिर इंग्लैंड में आयरलैंड के पास, फिर स्कॉटलैंड इत्यादि में होते हुए फिर हम लोग चले जाएंगे अमेरिका में. अमेरिका में वाशिंगटन, न्यूयॉर्क इत्यादि के आसपास में प्रचार कर हम लोग फिर पूर्वी भाग में ह्यूस्टन से न्यू एंजल्स, फिर वहाँ से हम लोग कैलिफोर्निया इत्यादि में, वहाँ पर डेजर नाम का एक स्थान है, वहाँ पहाड़ी अंचल में वृंदावन जैसा, वहाँ से फिर हम लोग होनोलुलु हवाई द्वीप होते हुए उधर से जापान से होते हुए ऑस्ट्रेलिया के पास से होते हुए फिर हम लोग कलकत्ता होते हुए, कलकत्ता तो लौटे उतरेंगे नहीं, फिर वहाँ से हम दिल्ली गुरु पूर्णिमा के कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे. विदेशों में हमने देखा करीब करीब तीन प्रकार के लोग हैं. एक तो कर्मों में ऐसे लगे हुए हैं जो उनको एक मिनट की समय नहीं है, दिन रात भोगों में लगे हुए हैं. ये लोग हमारे साथ में जो 20 25 40 आदमी जो जाते हैं, ये लोग प्रचार करते हैं, उनको ले आते हैं, और जब ये लोग भक्ति के विचारों को सुनते हैं बड़े प्रभावित होते हैं, और उन सब चीज़ों को जो कर्म की बातें हैं उनको छोड़ करके भक्ति में प्रवेश करने की चेष्टा करते हैं. लोगों के लिए मदिरा, गाय का मांस, स्वर का मांस इत्यादि सब अखाद्य तर्गाद्य खाते हैं, दुराचार में रहते हैं, उनको निकलना बड़ा भारी कठिन है। तो भी देखिए जो स्वामी जी ने जैसा किया और अभी ऐसा ही हो रहा है, वो लोग सब छोड़ करके भक्ति की तरफ में आ रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जो स्वामी जी ने प्रचार किया और वो भक्ति में कुछ प्रवेश किए, इसके बाद में चले जाने के बाद में वो निर्जीव से हो गए, उनको कोई विचारधारा नहीं मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसे वो चाहते हैं कि फिर वैसा ही प्रचार हो। वो बड़े श्रद्धा के साथ में सुनते हैं और प्रचार में भी हमारी बहुत सहायता करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, आप लोग यहाँ भी देखे होंगे, आजकल भगवान मानने की कोई जरूरत नहीं, दरिद्र ही नारायण है, अंधे लंगड़े लूले असहाय लोगों की सेवा करना ही भगवान की सेवा से बढ़कर है। यह विचार आज सारे विश्व में खूब जोर के साथ में बढ़ रहा है। इसके जन्मदाता विशेष करके विवेकानंद बंगाल के एक प्रचारक थे, वो गए और उन्होंने यह प्रचार किया, दरिद्र ही नारायण है, उनकी सेवा करने से हम सुखी और शांति हो सकते हैं। भगवान मंदिरों में नहीं है, मंदिरों में भगवान की सेवा पूजा की कोई जरूरत नहीं है, भगवान का ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं है, अंधे लंगड़े लूले कुष्ठ इत्यादि से जो तरह तरह से दुख पा रहे हैं, बस उनकी सेवा करना ही भगवान की सेवा से भी बढ़कर है। इसी तरह से हम सुखी और शांति हो सकते हैं। आजकल यह विचार चारों तरफ में विश्व में फैल रहा है, इसलिए वो लोग भक्ति की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं, लाख समझाइए। आजकल हम और की तो बात क्या कहें, हमारे इस धर्म प्राण भारत में जहाँ की व्यास जी का विचार चलता था, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी का विचार चलता था, जहाँ पर भागवत और गीता के और उपनिषदों के विचार से जहाँ पर शासन चलता था, आजकल गवर्नमेंट एक अंधे लगड़े स्कूल के लिए जो व्यवसाय हैं उनको सुखी बनाने के लिए अच्छी तरह से व्यवसाय कर सके, इनके लिए गवर्नमेंट पैसा देती है, उनको सहायता करती है। अवैध जो बच्चे पैदा होते हैं उनको प्रोत्साहन दे करके उनको खूब आराम के साथ में जीवन बिताएं। जो लोग अत्यंत घृणित अवस्था में है, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चोरी करते हैं, साधु संतों को भी जो उच्च विचार है उनको खींच करके इनके बराबर लाया जाए, ये सब विचार चलते हैं। कहां इनको ऊपर उठा करके समस्त लोगों को ब्राह्मण बनाया जाए, जाति की दृष्टि से नहीं गुणों से उनके विचार उन्नत हों, कहां भारत विश्व संसार का गुरु बने और यहाँ के प्रत्येक लोग सदाचारी हों, भक्तिमान हों, सबके प्रति में दया मित्रता ये सब भाव आए, ये सब ऊपर उठा करके समाज को ऊपर ले जा करके और उन्नत करें, ऐसा आज विचार नहीं, बात गवर्नमेंट को नहीं है। आप चाहेंगे जैसे हमारे मंदिरों में कुछ सेवा करें, कुछ सहायता कर नहीं करेंगे, वो सहायता किस में करेंगे? ठीक इसके विपरीत हमारा भारत, बल्कि मस्जिदों के लिए कुछ करेंगे वो कोई बुरी बात नहीं है, करें, और सब काम जो है उसमें करेंगे, अवैध जच्चा खाने के लिए खूब करेंगे। यदि अंधे और लंगड़े ही भगवान है तो जो अभी आराम के साथ में जीवन ग्रहण कर रहे हैं तो उसे वो बड़े भगवान है। आज तक अंधे लंगड़े लूलों की सेवा करके कोई जीवन में सुखी हो सका है? वो तो हमारा कर्तव्य है, दूसरों की हम सेवा करके उनको हम सहायता पहुंचाएं, ये तो हमारा फर्ज है, किंतु स्थूल है। लाख लाख जन्म तक इन लोगों की सेवा करने से भी आपको फिर वही अवस्था में आना पड़ेगा, आपको भी अंधा लंगड़ा लूला बनना पड़ेगा और वो अच्छे होकर फिर आपकी सेवा करेंगे, ये इसका फल होगा। इस चीज को अच्छे तरह से समझेंगे। यदि उनको किसी प्रकार से हम ये बतलाते कि तुम ये जो दुख हो कर रहे हो इसका मूल कारण है भगवान को तुमने भूल गया, इस अपराध के कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हो रही है, तुमने पाप किए, इस जन्म में अच्छी तरह से रह करके भगवान का नाम करो और अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो तो ये कितना अच्छा काम होता। उनके एक व्यक्ति की भी चित्त वृत्ति को भगवान की तरफ में मुड़ जाते तो तुमका कल्याण हो जाता। आजकल ऐसी शिक्षाएं कोई न सुनता है न कोई मानता है, बहुत कम लोग हैं इस चीज को समझते हैं। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, जिसने ब्रह्मांड की सृजन किया है, ऐसे ऐसे करोड़ों सब जगत का नियमन करता है, वो बड़ा दयालु।